विदेशी हस्तक्षेप यानी फॉरेन इंटरफेरेंस के पीड़ित धीमे स्वर में ही सही, लेकिन बाहर से आने वाले जासूसों पर लगने वाले नए अंकुश का स्वागत कर रहे हैं। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने SBS को बताया है कि बहुसांस्कृतिक समुदायों में अधिवेताओं को लक्षित करने की योजनाएं, संस्थाओं में घुसपैठ करने की कोशिश और खुफिया तकनीक को चुराने के प्रयासों की रोकथाम के लिए नए जतन किए जा रहे हैं। मोहम्मद हाशिम ने विदेशी ताकतों द्वारा धमकाए जाने का दंश खुद झेला है। उनके परिवार के लोगों को ईरान के शासन द्वारा मरवाया गया था और उनके पिता को हाशिम के ऑस्ट्रेलिया में मुखर स्वर के लिए भी धमकी आई थी।
How they are just threatening me, my family and every others, even in Iran, outside Iran, it's really terrible. No, it's just feeling us really terrible.
वे अकेले नहीं हैं। वरिष्ठ खुफिया एजेंसी के सूत्र बताते हैं कि 2020 से अब तक लगभग 120 ऐसी मुहिम सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं, जिसमें विदेशी हस्तक्षेप को रोका गया है। एक मामले में एक खुफिया कर्मचारी को किसी की निजी जानकारी निकालने के लिए हर संभव प्रयास करने की एवज में $10,000 की पेशकश की गई थी। वहीं एक दूसरे विदेशी एजेंट ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को अपने देश के एक ऐसे व्यक्ति के पीछे लगाया जो माना जा रहा था कि यहाँ रहकर अपनी देश की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इन व्यक्ति के घर के कचरे तक को छाना बीना जा रहा था। यहाँ तक पूछा गया था कि इस व्यक्ति को गायब करने का क्या खर्चा लगेगा। इसी तरह एक दूसरे अधिवेता को विदेश जाने का प्रलोभन दिया गया था ताकि वहाँ उनको ठिकाने लगाया जा सके। गृहमंत्री क्लेयर ओनील कहती हैं,
What's really disturbing about the foreign interference problem is that it's not coming from just one country. And in fact, we see quite a diverse array of countries represented in this, whether it's our Cambodian Australian community that need protecting, our Iranian Australian community or others. The critical point though here is that these countries are learning from each other in their practices.
अब सरकार अपनी फॉरेन इंटरफेरेंस टास्क फोर्स की शक्तियां बढ़ा रही है। अब और अधिक सरकारी एजेंसियां इस टास्क फोर्स के अवलोकन के अंतर्गत आएंगी। वहीं तकनीकी क्षेत्र अब यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर अलग समर्पित निगरानी की एजेंसी बना रहा है। 2020 में मॉरिसन सरकार के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी आसियो के मुखिया माइक बर्जेस ने यह उजागर किया था कि किसी देश के खुफिया एजेंट ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए थे और उन्हें उनके देश वापस लौटा दिया गया था, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि ये एजेंट कौन से देश के थे। हाल ही में मई माह में इन एजेंटों की पहचान उजागर हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक खोजी पत्रकारिता रिपोर्ट में ये पाया गया था कि ये एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ से आए थे। SBS न्यूज के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि ये भारतीय खुफिया जासूस ही थे। उस समय लेबर सरकार ने राष्ट्रीय मूलभूत ढांचे और संसाधन योजनाओं के रक्षण के लिए विदेशी निवेश में बड़े बदलावों की घोषणा की थी। कोषाध्यक्ष जिम चामर्स ने तब कहा था कि
Australia welcomes foreign investment, but only if it's in our national interest. And the global conditions I've described today demand a rethink of the regime that underpins it.
साथ ही कोषाध्यक्ष ने ऑस्ट्रेलियाई जनता को ये आश्वासन भी दिया था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण हैं।
We've got a good relationship with India and with other countries in the region. It's an important economic relationship. It's become closer, I think, in recent years as a consequence of efforts on both sides, and that's a good thing.
अब एक ऐसी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जिसके जरिए अधिकांश भारतीय ऑस्ट्रेलिया आते हैं और इसे अपना घर बनाते हैं। प्रवासन व्यवस्था को विदेशी हस्तक्षेप का एक बड़ा हथियार माना जा रहा है और इस व्यवस्था में अब बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। नए नियमों में वे अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो ड्रोन तकनीक सरीखी पढ़ाइयां करने आएंगे, उनका गहरा अवलोकन किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्षेत्रों में वे संवेदनशील जानकारी के संपर्क में आ सकते हैं। गृह मंत्री क्लेयर ओनील इस पर कहती हैं,
We need to be careful. There's sensitive information, especially in postgraduate research, and we need to make sure that those students are actually here to study and not to commit intellectual property theft.
विदेशी एजेंट पाए जाने की स्थिति में उन्हें उनके देश निष्कासित भी किया जा सकता है। विपक्ष गृह प्रवक्ता जेम्स पैटरसन का कहना है कि सोशल मीडिया के खतरों से निपटना भी जरूरी है और यह है कि विदेशी हस्तक्षेप पर इससे कड़ी सजा होनी चाहिए.
When people aren't charged, when people aren't convicted, when they're not thrown into jail, they don't fear the consequences. Just being asked to hop on a plane and head back home is not a powerful enough deterrent to prevent this activity from occurring in our country, and we need to see more charges coming forward so that people really feel the consequences of engaging in this foreign interference and espionage.
लेकिन विपक्ष एक मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ा है और वह है बहुसांस्कृतिक समुदायों के लिए लक्षित समर्थन बढ़ाने को लेकर. गृह मंत्री ओनील का कहना है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार की जिम्मेदारी है कि वे हर समुदाय का ख्याल रखें.
This is actually a really serious and significant issue in their lives, and to date the Australian government has not been providing them much assistance, and that will change with our reforms.
मोहम्मद हाशिम का कहना है कि ये एक शुरुआत है, लेकिन केवल एक शुरुआत ही.
Heartwarming that I can hear they are caring about us, but honestly it's not enough. We need more serious action from Australian government.
ये संदेश दिया जाना आवश्यक है कि किसी भी ऑस्ट्रेलियाई को धमकाया नहीं जा सकता. इस रिपोर्ट को आपके लिए प्रस्तुत किया SBS न्यूज से नवीन रजीक और एलन ली, और SBS हिंदी से वृशाली जैन ने.